दिन भर 2 मार्च दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। आरक्षण की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे जाट।
अरे जाट का मैं छोरा, छोरा ना मैं आम हूँ, और जब बोल दिया वह ठान लिया, और जब ठान लिया वह करना। आरक्षण के छोटे के
दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर निकाला मार्च।
आप आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, देश की कैपिटल में आकर ये कहां से सही है?
हर कोई राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है, तो ये किसी का भी एक पार्टी का वो नहीं हो सकता कि हम वंदे मातरम बोल रहे हैं तो बस हम ही राष्ट्रवादी हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 6ठे चरण का प्रचार समाप्त।
आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने के लिए भी केंद्र की सरकार के ऊपर फिर से दबाव बनाया जाएगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की अगुवाई में आज जाट समुदाय के लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए जुटे लोग केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग उठा रहे थे। प्रदर्शन में मुख्य तौर पर हरियाणा से आए लोग थे, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश और आसपास के दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान बीते साल हरियाणा में हुए आंदोलन के वक्त जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की मांग भी उठाई गई। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज मार्च निकालकर दिल्ली यूनिवर्सिटी बचाओ का नारा बुलंद किया। विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि वामपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में बीते हफ्ते विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बीच टकराव हुआ था। इसके बाद गुरमेहर कौर नाम की एक छात्रा की विद्यार्थी परिषद के खिलाफ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसे लेकर राष्ट्रवाद पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। इस मुद्दे पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अपनी राय रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे, और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है, हम लोग उसको आगे रखेंगे। और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड, ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है।
ये थे अरुण जेटली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने इन आरोपों को से इनकार किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान रूस के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रूस के राजदूत के साथ गोपनीय बैठकों की खबरें गलत हैं। सेशंस ने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने जनवरी में सीनेट को भी जानकारी दी थी कि उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 ऐसी मुलाकातों की पुष्टि की थी। यूक्रेन में एक खदान में मीथेन गैस के जरिए धमाका होने से कम 8 श्रमिकों की मौत की खबर है। ये धमाका लवीव क्षेत्र में जमीन से करीब 500 मीटर अंदर हुआ। धमाके के बाद 20 अन्य श्रमिकों के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने देश के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या के मामले में मलेशिया सरकार के बयान पर सवाल उठाए हैं। नम की मौत 2 हफ्ते पहले हुई थी। इस बीच मलेशिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के लोगों के बिना वीजा के मलेशिया आने की नीति को खत्म कर रहा है। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने बताया कि नए नियम 6 मार्च से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा,
saya ingin menyebutkan bahwa mulai
मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार से मलेशिया आने वाले उत्तर कोरिया के सभी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लागू होंगे। ये फैसला सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुझे लगता है कि मंत्रालय और प्रवासन विभाग की ओर से लिया गया फैसला प्रभावी तरीके से लागू होगा। ये थे मलेशिया के उप प्रधानमंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज शाम प्रचार थम गया। 6ठे चरण में 4 मार्च को 49 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार थमने के पहले सभी पार्टियों के नेता पूरा जोर लगाते रहे। वहीं मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर भी आज प्रचार थम गया। बीबीसी समाचार।
B
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी दिन भर का सीधा प्रसारण। भारत में आम लोगों पर आज महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बैंकों ने घोषणा की है कि अब एटीएम से बार बार पैसा निकाला तो टैक्स देना होगा। विस्तार से पढ़ना चाहें इस खबर को तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहाँ इस खबर की सुर्खी है बस कीजिए अब अच्छे दिन नहीं चाहिए। और कार्यक्रम की शुरुआत आज दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां जाट आरक्षण की मांग के साथ जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुटे। ये पहला मौका नहीं है जब जाट आरक्षण की मांग के साथ सड़कों पर उतरे हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। और जाटों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे भी सड़कों पर उतरेंगे। सलमान रावी की रिपोर्ट।
अरे जाट का मैं छोरा, छोरा ना मैं आम हूँ, सुनता ना किसी की ना किसी का गुलाम हूँ, इक्को गणा चोखा सारे कहे ही हो हीरो सरा जाट की लुक के आगा हर एक बंदा जीरो से।
दिल्ली के जंतर मंतर पर आज काफी गहमा गहमी है।
जिंदाबाद।
कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच आज जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली के आसपास के राज्यों से जमा हुए जाट समुदाय के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर जमा हुए लोग पिछले साल हरियाणा में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई, उन पर दर्ज मुकदमों की वापसी और अपने लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रोहित राठी।
मेरा नाम रोहित राठी है, बहादुरगढ़ से हूँ। मैंने ड्यू में एडमिशन ले रखा है। जो मेरे क्लासमेट थे, वो जो हमारे भाई हैं वो भी, लेकिन वो थोड़ी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके 50% मेरे 90%, फिर भी मैं नॉर्थ कैंपस में नहीं हो पाया, मेरा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाया। उनके 50% होते हैं, उनके टॉप कॉलेज में बैठे हैं वो, हमारा क्या कसूर है? हमने ज़्यादा पढ़ लिया, ये कसूर था हमारा। तो इसीलिए हमें आरक्षण चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। ये कोई फ़ायदा थोड़ी है कि जो मेहनत नहीं करते वो कहीं और पहुंच जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं।
जाटों के बारे में कहा जाता है कि ये एक संपन्न समुदाय है जिसके पास जमीन है और खेती में भी वो संपन्न है, मगर प्रदर्शनकारी जाट कहते हैं कि खेती अब उनके लिए घाटे का सौदा है और उनके पास रोजगार के दूसरे जरिए उपलब्ध नहीं है।
मेरा ये कहना, वो कहते कि हमारे पास जमीन है। जमीन किसके पास नहीं है? श्रेणी जो कास्ट है उसके पास जमीन है। जाटों के पास जो जमीन है वो अब एक किला एक एकड़ से भी, मतलब दो दो जो बोलते हैं ना, हमारा एक एकड़ में चार भाई हैं, कहाँ से पूरा पढ़ेंगे? और जो आपको पता है कितना कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी होती है जो खेती है, और हमारा जो समर्थन मूल्य है वो बिल्कुल ही 50 रुपये 10 रुपये ऐसे भिखारियों की तरह हमारा बढ़ाते हैं।
मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो खेती बाड़ी है वो अब घाटे का धंधा हो गया है।
घाटे का क्या, वो तो मतलब कभी से घाटे का है, लेकिन हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा।
पिछले साल हरियाणा में जाटों द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें दूसरी बिरादरियों के लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये हिंसा का दौर कई दिनों तक चला, मगर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था।
सारे झूठे आरोप हैं, जाटों ने कुछ नहीं किया था, जाटों पे सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने का एक ही कारण था कि भाई जो कुछ हो रहा था जाटों ने कर रखा था, आरक्षण था जाटों का, आरक्षण था तो जाटों का आरक्षण था, इसलिए जो भी कुछ किया गया वो सारा जाटों पे थोप दिया गया।
आपका नाम क्या?
दिनेश सानवान।
आपका नाम?
सतीश दांगी, महम चौबीसी, मदीना गांव।
आप कहाँ से हैं?
बहादुरगढ़ से।
तो ये जो आरोप जो लगाए थे इसमें क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं थी, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुई?
बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ हुआ था सिर्फ दूसरों की तरफ से
भड़का दिया गया। ये भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करवाया, आग लगा दी तो भड़कवा दी इंसान और नाम लगा दिया कि जाटों ने ये किया।
अब एक महीने से ज्यादा, एक महीने से ज्यादा।
नाम बताओ पहले।
मेरा जसवीर नाम है।
जी, कहां से आए हो?
मदीना गांव, ब्लॉक समिति का मेंबर हूं।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राजनीतिक दल ही समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
को बांट रही है आपस में। अब ये गुजरात की तरह दंगे कराओगी सरकार, यहाँ दंगे नहीं हो लेगा, इतना सरकार नहीं जाएगी।
प्रोपेगेंडा है बिल्कुल, जैसे यूपी में मुसलमान और हिंदू कर दिया, हरियाणा में जातिगत बला रही है, और जैसे पटेल और गुजरात में पटेल और अधिक, और राजस्थान में गुज्जर और अधिक दूसरी जातियां हैं उनके साथ करवा रही है, और यहां पे भी अपना राजनीतिक फायदा उठा।
जाट नेता जंतर मंतर पर किए गए अपने प्रदर्शन को अप्रत्याशित बताते हैं। प्रदर्शन के दौरान जाट नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 20 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तो होली के बाद वो दिल्ली में लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में काफी गहमा गहमी है। राष्ट्रवाद क्या है, क्या नहीं है, कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी नहीं है, इन सवालों के इर्द गिर्द वाम दलों के मार्च के जवाब में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर से मार्च निकाला। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य वहां मौजूद थी, सुनिए उनकी आंखों देखी।
मेरे पीछे यहाँ बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। इसका नाम दिया गया है सेव डीयू।
बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है।
एक-एक करके हम एक-एक करके आपसे बात करेंगे।
मैं पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ
जी।
मैं पीएचडी कर रही हूँ और अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। अगर उमर खालिद को अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें भी है। हम अगर बोलना चाहते हैं अपने देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति, हमें क्यों रोका जाता है? हम एक हैं, हमें ये मैसेज देना, हम एक हैं। यहाँ पे देश को बांटो नहीं, कोई गद्दारी नहीं करो, अपने देश का रहते हैं, देश का सम्मान हमारे सर्वोपरि है।
नहीं, पर उमर खालिद को उस दिन ये आरोप लगे कि उस दिन बोलने नहीं दिया गया, सेमिनार में आने नहीं दिया गया और पत्थरबाजी हुई। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि बोलने दिया जाना चाहिए और उसका हिंसा से उसे नहीं रोकना चाहिए।
पहली बात, मैं बीबीपी से नहीं हूँ।
अच्छा।
मैं केएमसी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का।
अच्छा।
सबसे पहली बात, वहाँ पे कोई भी हाथापाई नहीं हुई थी, हिंसा नहीं हुई थी। उधर से बस्तर की आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे, युवाओं का खून खोला और उसके बाद पहले उन्होंने हाथ उठाया, उसके बाद इधर की तरफ से मारपीट शुरू हुई थी।
अच्छा, बार बार हम ये जानना चाहते हैं, आज यहाँ इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, सब भारत के झंडे लेके खड़े हुए हैं, पर जो वाम छात्र संघ है और उमर खालिद है, उनका कहना है कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम देश से अलग होने की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को सारी आज़ादी मिले, पढ़ने की, बोलने की, खाने की, उनको सारे हक मिले जो दिल्ली में रहने वाले छात्रों को मिल रहे हैं।
कश्मीर के टुकड़े होंगे, भारत माता के टुकड़े होंगे, जंग चलेगी भारत माता की बर्बादी तक, अगर ये नारे राष्ट्रवादी हैं तो फिर राष्ट्रवाद क्या है? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। और अगर वो लोग ये कहते हैं कि भारत माता की बर्बादी के नारे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग करना हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
बात ये ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, और ये सिर्फ एबीवीपी के लिए नहीं है, ये लेफ्ट वालों के लिए भी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप भारत विरोधी नारे भी नहीं लगा सकते हैं देश में खड़े होकर। आप आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं देश की कैपिटल में आकर, ये कहाँ से सही है? ये भी नहीं अलाउड होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत आज़ादी, तभी वो लोग नारे लगाने के बाद घूम भी रहे हैं, आजकल खुलेआम सेमिनार्स दे रहे हैं, अपनी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन भारत के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। ये दोनों ग्रुप के लिए, मैं एक न्यूट्रल स्टूडेंट हूँ, मैं ना एबीवीपी की हूँ ना मैं लेफ्ट वालों की हूँ, तो मेरे अनुसार यही है, आज़ादी सबको मिली हुई है, बहुत अच्छी मिली हुई है, हर कोई कुछ भी डाल सकता है, लेकिन भारत विरोधी नारे नहीं हम लगाएंगे, ना उसे हम बर्दाश्त करेंगे अपने देश में।
अपने देश में किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? अब ये बताइए, कश्मीर से आज़ादी मांग रहे हैं जहाँ के लिए इतने लोग शहीद हो चुके हैं। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे इतने सारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, उसके लिए आप कह रहे हो कश्मीर? अब जब मैं कल एक डिबेट देख रहा था, वहाँ के एक जेएनयू के शायद कुछ प्रोफेसर थे, लेफ्टिस्ट से संबंध रखते हैं वो, तो उनको सिर्फ इतना बोला गया कि आप ये बोल दीजिए कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने वो बोलने से मना कर दिया कि मैं क्यों बोलूं।
जो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट मार्च हुआ है, आज बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हैं, उस पर लिखा गया है कि एबीवीपी जो है वो राष्ट्र के साथ है, नेशनलिज्म के साथ है।
इस बात में यही कहना चाहूँगी, राष्ट्रवाद कोई टैग नहीं है जो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सके। हर किसी के अंदर राष्ट्रवाद है, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है। तो ये किसी का भी एक पार्टी का वो नहीं हो सकता कि हम वंदे मातरम बोल रहे हैं तो बस हम ही राष्ट्रवादी हैं, ना ही सिर्फ तिरंगे से ही राष्ट्रवाद शो किया जा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला मार्च, आंखों देखी बता रही थी दिव्या आर्य। और उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए छठे चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया है। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया में 49 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। आज तमाम पार्टियों के नेताओं ने चुनावी रैलियां की और जमकर वादे किए। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती,
आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने के लिए भी केंद्र की सरकार के ऊपर फिर से दबाव बनाया जाएगा, अर्थात आपके इस जनहित से जुड़े मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपका ये अति पिछड़ा हुआ पूर्वांचल क्षेत्र अलग से राज्य नहीं बन जाता है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी,
हमारी सरकार आएगी और वो आने वाली है, पता लग जाता है। मोदी जी के चेहरे पर देखो मुस्कुराहट गायब हो गई, टेंशन दिखाई देगा आपको, मतलब कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान को, मजदूर को, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको मदद करेंगे।
इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो किया।
पांच चरण में सरकार बनाने का काम पांच चरण की जनता ने समाप्त किया है। छठे और सातवें चरण में दो तिहाई बहुमत पर पहुंचने का काम।
पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार रही है। योगी आदित्यनाथ के लोगों को टिकट नहीं मिला, इस तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन अब आदित्यनाथ और अमित शाह ने मिलकर रोड शो किया है, तो क्या नाराजगी खत्म हो गई और पूर्वांचल में बीजेपी कितनी मजबूत जमीन पर नजर आ रही है, यही समझने के लिए मैंने गोरखपुर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार कुमार हर्ष से अब से कुछ देर पहले बात की।
शुरुआती दौर में जब इस तरह की खबरें आई थी कि योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा की जा रही है और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में या चुनाव अभियान समिति में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, तब से अब तक काफी वक्त बीत चुका है और हाल के दिनों में पार्टी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जिस तरह से योगी को कैंपेन का प्रमुख प्रचारक के तौर पर लाया गया है, उससे ऐसा लगता भी है कि योगी खुद भी संतुष्ट है और पार्टी भी उनकी उपयोगिता समझती है। जहां तक टिकट न मिलने का सवाल है, शुरू में योगी समर्थक क्योंकि उन्हें एक क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा नेता मानते हैं, इसलिए अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन पार्टी ने शायद ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया और जिस पॉलिसी पर पार्टी यूपी में दिखाई दे रही है कि उसने सांसदों को जवाबदेह बनाया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण में उनकी वहां पर तो भूमिका होगी और वहां पर उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को जिताएं। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए और खासतौर पर अगर आपका जो सवाल था, तो शिकायत और शिकवा का दौर खत्म हो चुका है, पार्टी और योगी फिलहाल एकदम एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
भले ही योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसा आप कह रहे हैं कि एक साथ नजर आ रहे हैं, ये बताइए कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जमीन पर कितनी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि काफी ताकत झोंक दी है पार्टी ने पूर्वांचल के लिए।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से भी कहीं ज्यादा इस बार सांगठनिक मशीनरी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। जो लखनऊ में जिस तरह के वार रूम्स और जिस तरह का मीडिया सेंटर अब तक दिखाई देता था, वो इस चुनाव में पहली बार पूर्वांचल में, गोरखपुर में और बनारस दोनों जगहों पर एक्टिव दिखाई देता है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और पिछले एक से डेढ़ हफ्तों में नियमित तौर पर कोई न कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दौरा करता रहा है, जिसकी जिम्मेदारी जनसभाओं की बजाय छोटी छोटी बैठकें करने में। तो पार्टी ने बहुत ज्यादा अपने आप को यहाँ सांगठनिक स्तर पर इन्वॉल्व किया है और शायद इसकी बड़ी वाजिब वजह यह भी है कि हिंदी पट्टी का एक ये राज्य उत्तर प्रदेश बहुत कुछ मोदी सरकार की साख को तय करेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह की हार हुई है उसके बाद पार्टी के लिए ये आखिरी अवसर है हिंदी पट्टी में अपनी ताकत बचाने और दिखाने का।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए छठे चरण का प्रचार आज समाप्त। हिंदी पट्टी में अपनी ताकत दिखाने और बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरी मौका। ये थे वरिष्ठ पत्रकार कुमार हर्ष और अब हम मुखातिब होंगे अपने श्रोताओं से।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज मेरे साथ हैं सुमिरन प्रीत कौर
जी।
सुमिरन जी, चिट्ठियां, पोस्टकार्ड या ईमेल, कहां से शुरुआत करेंगे?
तारीफ से शुरुआत करते हैं और हाथ से लिखी हुई इस पोस्टकार्ड से शुरू करते हैं। ये लिखा है नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने, जिला शिवहर बिहार से। ये लिखते हैं, 24 फरवरी को दिन भर कार्यक्रम में सुना जो इन्होंने रेहान फजल की जो विवेचना थी वीरप्पन पर,
जी
वो
हाँ,
इन्हें बहुत
चंदन
पसंद
तस्कर वीरप्पन पर विवेचना की थी, जी हाँ।
वो इन्हें बहुत पसंद आई। साथ में उन्होंने लिखा कि जुबैर अहमद, राजेश जोशी ने जो तारिक फतेह से बातचीत की वो काफ़ी ज़ोरदार लगी, खासकर की पाकिस्तानी महिला तथा भारतीय महिलाओं पर की गई समीक्षा काफ़ी सराहनीय रही।
हाँ, तारिक फतेह हमारे यहाँ ऑफिस आए थे, दिल्ली में स्टूडियो में आए थे, हमने उनसे बातचीत की।
एक ईमेल आया है जो गणेश वर्मा ने लिखा है संत कबीर नगर से, और वो कहते हैं कि जुबैर अहमद, राजेश जोशी, दिव्या आर्य और सलमान रावी ने काफी सटीक सवालों से तारिक भाई को घेरने में कामयाबी हासिल की।
और घेरने का मकसद हालांकि हमारा ऐसा नहीं था।
अच्छा, रहा सवाल हम भारतीय मुसलमानों का, मैं तारिक भाई से कहना चाहता हूँ कि हम हमारी हालत से काफ़ी वाकिफ़ हैं और इसके हल के लिए किसी से गुहार भी नहीं लगाते। यहाँ का मुसलमान अपनी परेशानियों से कैसे निपटा जाए वो खूब जानता है। तो ये अगली चिट्ठी लिखी है नीरज कुमार ने मंडलाना नारनौल से, और लिखते हैं कि संडे दिनभर में तारिक फतेह से जो वार्ता सुनवाई गई वो बहुत अच्छी लगी। तारिक साहब के विचार बहुत ही उदार तथा सर्वधर्म सम्मान के थे।
जी, जी, उन्होंने संभाव की बात जी कर रहे हैं।
उन्होंने औरंगजेब को काबिल बताया तथा दारा शिको की प्रशंसा की। तारिक साहब ने तैमूर लंग के हिंदुओं के कत्लेआम की भी आलोचना की।
जी हाँ, वो इंटरव्यू बहुत सारे हमारे लोगों को पसंद आया, सोशल मीडिया पर भी, हमारी वेबसाइट पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इस तरह के लोगों को बुलाते रहेंगे जिनको दुनिया जहान में लोग पसंद करते हैं और उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो हमारी ये कोशिश है।
जी, अब ईमेल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और ये ईमेल लिखा है महेंद्र सहारण, सुनीता, मुकेश सहारण और मंजू सहारण ने। ये हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, और
पूरा
कहते हैं
परिवार लगता है साथ में है।
और उन्होंने कहा है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब साथ बैठकर बीबीसी के कार्यक्रम सुनते हैं। शुक्रवार को रेहान फजल की जो विवेचना थी विरप्पन पर, वो बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पैर फैलाने वाले आईएएस पर मोहनलाल शर्मा
जी, हाँ, अभी उन्होंने दुनिया जहान कार्यक्रम
जी
किया
तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग शानदार थी, पर कृपया थोड़ा ध्यान मणिपुर पर भी दें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महेंद्र सहारण साहब, और आपका पूरा परिवार, जी हाँ, पूरे परिवार आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि यूपी और पंजाब वगैरह के हम लोग वहाँ रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हो जाता है, बड़ा राज्य भी है यूपी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मणिपुर से ही रिपोर्टें सुनने को मिलेंगी, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूँ।
और एक सुझाव दिया है शिव बालक सिंह ने जिला खीरी उत्तर प्रदेश से, और ये कहते हैं कि अगर कुछ कवरेज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों पर भी की जाए तो अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तारीफ भी की है, आजकल की जो आपकी प्रस्तुति का अंदाज है वो काफ़ी काबिले तारीफ है, और 23 फरवरी दिन भर में महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव परिणामों पर रिपोर्ट उन्हें बहुत
पसंद आई। शिव बालक सिंह जी, अगर आप लगातार हमारे कार्यक्रम सुने तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो हम लगातार रिपोर्टें करते रहते हैं, बांग्लादेश में हमारे सामने एक समस्या आती है कि वहाँ हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग थोड़ा कम होते हैं, इसलिए हम जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं अंग्रेज़ी के, उनके ज़रिए जो रिपोर्टें आती हैं वो आपको सुनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से तो अक्सर हम लाइव बातचीत करते हैं, रेडियो पैकेजेस सुनने को आते हैं, जो भी खबरें वहाँ की होती हैं वो सब, और अफगानिस्तान से भी।
जी बिल्कुल,
तो आप लगातार सुनते रहें और ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।
जी, और ये ईमेल आया है हर्ष चतुर्वेदी का बेंगलुरु से, जो कहते हैं कि ब्रजेश उपाध्याय द्वारा ट्रंप सरकार के संदर्भ में प्रस्तुत वॉशिंगटन डायरी उन्हें बहुत अच्छी लगी।
बिल्कुल, ब्रजेश उपाध्याय इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे हमें उम्मीद है,
और वो आपकी आवाज सुनकर बड़े खुश हैं बड़े दिनों बाद रेडियो पर, उन्होंने
और
लिखा
हम
है।
आपकी चिट्ठी पढ़ के बहुत खुश हैं साहब कि आप चिट्ठी लिखते हैं।
अच्छा, ये ईमेल आया है अनवर खान का प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, जो लिखते हैं समीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग में दम है, थैंक यू बीबीसी हिंदी फॉर इम्पार्शियल एंड एनकरेजिंग रिपोर्टिंग।
अंग्रेजी में लिखा है और समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं प्रतापगढ़ से
उत्तर प्रदेश।
नाम क्या बताया?
अनवर खान।
अनवर खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे तमाम संवाददाता तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ संभव हुआ वहाँ से आप तक रिपोर्टें पहुँचाते रहे। आप हमारे कार्यक्रमों पर इसी तरह प्रतिक्रिया जाहिर करते रहें। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
मुगल बादशाहों में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब माना जाता है, और वो है आलमगीर औरंगज़ेब। ऐसा माना जाता है कि आम लोगों के बीच औरंगज़ेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरंगज़ेब उसको इश्क हो गया था और वो इश्क में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार हो गए थे। क्या आप जानते हैं इस पूरे वाकये को? यदि नहीं जानते तो आप bbchindi.com पर आकर इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। और एक और शोध मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जो नींद है, जो आपके सोने का तौर तरीका है, वो आपको, जी हाँ, मोटा या पतला, वज़न बढ़ा सकती है, वज़न को कम भी कर सकती है। ये भी एक शोध है, वैज्ञानिकों ने किया है, जिसे आप bbchindi.com पर इस वक्त पढ़ सकते हैं। और अब खेल समाचार। राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं। बताएं क्या हो रहा है खेल की दुनिया में।
जी, सबसे पहले तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज जो जारी है उससे खबर ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के साथ ही जो टेस्ट मैच था, पुणे का टेस्ट मैच था, वो 3 दिन के भीतर खत्म हुआ। और इसको लेकर ICC से फटकार भी सुननी पड़ी है। तो आगे संभावना है कि बेंगलुरु में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसकी पिच बैटिंग के अनुकूल रह सकती है। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भारतीय कोच अनिल कुंबले का घरेलू मैदान है। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पुणे की टीम की हार को भुलाकर उनकी जो टीम है अगले मैच की तरफ देख रही है और इसमें वो अपनी टीम का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है कोच का, जब जब कुछ मैचेस आपके जो आप सोचते हैं वैसे नहीं हो पाते, तो ऑल द मोर दैट आपके माइंड फ्रेश हो, तो इसलिए हम लोग पुणे में एक अलग चीज़ करें, एक टीम एक्टिविटी किए। हम लोग बाहर गए और ट्रैकिंग किए और एक दिन क्रिकेट के माहौल से काफ़ी दूर गए, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग लगातार 10 महीने से डे इन डे आउट हम लोग मैचेस खेलते आ रहे हैं। रिजल्ट्स कभी आपके फेवर में होगा, कभी आपके फेवर नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे टीम को बॉन्ड, टीम की बॉन्डिंग रखे और कैसे उनकी हौसला बढ़ाए रखे।
ऑस्ट्रेलिया स्पिनर गेंदबाज स्टीव ओकीफ ने पुणे टेस्ट की 2 पारियों में 6-6 विकेट हासिल किए थे, जिसके दम पर भारत की दोनों पारियां 105 और 107 रन पर सिमट गईं। दूसरा टेस्ट मैच का अब इंतजार किया जा रहा है जो बेंगलुरु में शनिवार से शुरू होगा। और वहीं टेनिस से खबर है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप में कल देर रात एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन रॉजर फेडरर इस टूर्नामेंट से हारकर बाहर हो गए। 18 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता फेडरर को रूसी क्वालिफायर एवेगने डोनेस्की ने संघर्ष मुकाबले में मात दी। दुनिया के 116वीं रैंक वाले डोनेस्की ने 9वें नंबर के फेडरर को 3-6, 7-6, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। ये मुकाबला करीबन 2 घंटे से ज्यादा समय तक चला। 2007 के बाद ये तीसरा मौका है जब फेडरर को किसी क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा हो।
खेल समाचार सुन रहे थे आप राखी शर्मा से। भारत में बजने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले एक बार फिर सुनते हैं मुख्य समाचार वात्सल्य राय से।
BBC समाचार। जाट समुदाय के लोगों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन कर नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज मार्च निकालकर दिल्ली यूनिवर्सिटी बचाओ का नारा बुलंद किया। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान रूस के अधिकारियों से मुलाकात की थी। यूक्रेन में एक खदान में मीथेन गैस के जरिए धमाका होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। मलेशिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के लोगों के बिना वीजा के मलेशिया आने की नीति को खत्म कर रहा है। नए नियम 6 मार्च से प्रभावी होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज शाम प्रचार थम गया। 6ठे चरण में 4 मार्च को 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 4 मार्च को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहां भी प्रचार थम गया है। पाकिस्तान सरकार ने कबायली इलाकों को देश के बाकी हिस्से से मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान से लगे इन इलाकों में अर्थ स्वायत्तता मिली हुई थी, उनकी अपनी रस्मों के मुताबिक विधिक और राजनीतिक प्रणाली भी है। इस बदलाव आने के बाद अब इन क्षेत्रों में रहने वाले आम चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और यहाँ पाकिस्तान का कानून भी लागू होगा। स्वीडन ने जानकारी दी है कि देश में अगले साल से सेना में भर्ती को दोबारा अनिवार्य किया जाएगा। ऐसा सुरक्षा को लेकर वैश्विक चुनौती और रूस की ओर से संभावित खतरे को देखते हुए किया जा रहा है। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार को अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को विदा दें, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।